दानियल की पुस्तक संख्या 195। रविवार के कानून तक का मार्ग, ट्रंप की भूमिका और दानियल के बारे में भविष्यवाणी का खुलासा।
40वें पद का छिपा हुआ इतिहास। 1989 में अंत के समय से लेकर 2020 तक के 6 राष्ट्रपतियों की श्रृंखला को समेटे हुए हैं, जब 7वें राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रपति पद चुरा लिया। 2020 एक छिपे हुए इतिहास की शुरुआत को चिह्नित करता है, उस बिंदु से लेकर सिकंदर महान तक, जो ये दर्शाता है कि शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय बाइबल की भविष्यवाणी का 7वां राज्य स्थापित होता है। वे 10 राजा तुरंत इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वे अपना 7वां राज्य 8वें राज्य को दे दें, जो 7 में से है, पापाई शक्ति। वो छिपा हुआ इतिहास 7वें राष्ट्रपति से आरंभ होता है और 7वें राज्य पर समाप्त होता है।
जब इतिहास ये बताता है कि यूनान को उकसाने वाले धनी राजा का प्रतिनिधित्व करने वाले ज़र्क्सीज़ से लेकर सिकंदर महान तक के बीच 8 फारसी राजा थे, तब हम पाते हैं कि पद 2 के अंत और पद 3 के बीच का छिपा हुआ इतिहास संख्या 8 के द्वारा पशु की प्रतिमा परीक्षण काल का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा तब पूरी तरह स्थापित हो जाती है जब रविवार का कानून लागू किया जाता है, और उसी समय 7वां और फिर 8वां राज्य आता है। 8 फारसी राजाओं की श्रृंखला सिकंदर महान पर समाप्त होती है, इसलिए संख्या 8 उस पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल को चिह्नित करती है जो रविवार के कानून पर आकर समाप्त होता है।
10 से 15 पद हमें बताते हैं कि मक्काबियों के इतिहास द्वारा निरूपित 3 मार्ग चिन्हों में तीसरा पशु की प्रतिमा की परीक्षा का समय था, और ये तीसरा मार्ग चिन्ह 101 ईसा पूर्व से शुरू होकर फाठनन ईसा पूर्व पर समाप्त होने वाली अवधि था। वह अवधि 167 ईसा पूर्व से प्रथम मार्ग चिन्ह के बाद आई, जिसने मोदीन में मक्काबी विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया। मोदीन एक नगर है जिसका नाम विरोध करना का अर्थ रखता है। 167 ईसा पूर्व उस मोदीन के विरोध के बाद आया और उसने दूसरे मंदिर के दूसरे समर्पण को चिन्हित किया। 167 ईसा पूर्व डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण की पहचान करता है, जो 1999 में रीगन के बाद से 8वें राष्ट्रपति है जो 7 में से है। 20 जनवरी 2025 को उनका शपथ ग्रहण 167 ईसा पूर्व द्वारा निरूपित था, और वह पुनः समर्पण समारोह जिसने ऐसा शैतानी चमत्कार उत्पन्न किया जिसमें 7 में से 8 होने के 2 संदर्भ शामिल है। अतः फारस के 8 राजा 161 ईसा पूर्व से 158 ईसा पूर्व तक रोम के साथ यहूदियों के गठबंधन के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसा करते हुए वे 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण का परीक्षण काल के लिए दूसरी गवाही प्रदान करते हैं। दूसरा पद 2020 के चुराए गए चुनाव तक आगे बढ़ता है, जहां आकर वो तब तक ठहर जाता है जब तक फारस के 8 राजाओं की एहतियातक गवाही लागू नहीं की जाती और उनका अनुप्रयोग ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण के बाद होता है, जब फारस के 8 राजाओं को दूसरे और तीसरे पद के बीच के इतिहास पर रखा जाता है। तब भी बाइडेन के शपथ ग्रहण से लेकर ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण तक एक छिपा हुआ कालखंड शेष रहता है।
उस छिपे इतिहास की पहचान प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में की गई है, जहां नास्तिकता का पशु 2020 में उन 2 गवाहों को मार डालता है। फिर 3.5 प्रतीकात्मक दिन बाद माइकल उतरकर उन 2 गवाहों को पुनर्जीवित करता है। एक पुनर्जीवित ट्रंप ने 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए अपना तीसरा अभियान शुरू किया, और एक पुनर्जीवित जंगल में पुकारने वाली आवाज ने जुलाई 2023 के अंत में 144,000 के बुलाना शुरू किया।
दानियल के 11वें अध्याय की 10वीं, 11वीं और 12वीं आयतें उस यूक्रेन युद्ध की पहचान करती हैं जो 2014 में शुरू हुआ था और जो रूसी विजय के साथ समाप्त होगा। इसके बाद वर्तमान रूसी परिसंघ का पतन होगा, ठीक वैसे ही जैसे 1979 में सोवियत संघ का पतन हुआ था। पद 13 से 15 तक 3 भविष्यवाणी की रेखाओं की पहचान करते हैं। पापाई सत्ता की बहाली की वो रेखा जो तब शुरू होती है जब टायर की वेश्या गुप्तावस्था से बाहर आती है का प्रतिरूप पद 14 में है, और उसकी ऐतिहासिक परिपूर्ति 2000 ईसा पूर्व में होती है, जब मूर्ति पूजक रोम भविष्यवाणी के इतिहास में 13 लोगों के लुटेरे के रूप में आया, जो अपने को ऊंचा करते हैं पर गिर पड़ते हैं।
तीन पदों में धर्मत्यागी रिपब्लिकनवाद की भविष्य सूचक रेखा का प्रतिनिधित्व एंटियोकस तृतीय के इतिहास द्वारा किया गया है, जो ट्रंप की भूमिका को 8वें राष्ट्रपति अर्थात 7 में से के रूप में प्रतिरूपित करता है। ये पद धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की भविष्य सूचक रेखा की भी पहचान करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व मकाबियों के इतिहास द्वारा किया गया है।
सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग की भविष्यवाणीगत रेखा, जो मिलराइटों के फिलाडेल्फियाई आंदोलन के रूप में आरंभ हुई और जो 144,000 के फिलाडेल्फियाई आंदोलन के रूप में समाप्त होती है, उसे पद्य 40 के गुप्त इतिहास पर भी आरोपित किया जाना था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 के 7 गर्जन मिलराइटों के फिलाडेल्फियाई आंदोलन और 144,000 दोनों के प्रतीक हैं। भविष्यवाणी को मुहर बंद करना और भविष्यवाणी की मुहर खोलना मसीह के द्वारा संपन्न होता है, और जब वो ऐसा करता है तब वो अपने आप को यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में चित्रित करता है। अध्याय 10 में वो स्वर्गदूत जिसे सिस्टर वाइट कहती हैं कि वो यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं है, बड़े शब्द से पुकारा जैसे सिंह गरजता है, और जब वो पुकार चुका तो सातों गर्जनों ने अपना शब्द सुनाया।
मसीह ने यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में लगभग सन 100 के आसपास उन 7 गर्जनों को भविष्यवाणी के इतिहास में स्थापित किया, और उसने तत्काल उसे मुद्रा बंद कर दिया, क्योंकि जब उन 7 गर्जनों ने अपना शब्द सुनाया तब यूहन्ना लिखने ही वाला था, और उसने स्वर्ग से एक वाणी ये कहते हुए सुनी, जो बातें उन 7 गर्जनों ने कही हैं उन्हें मुद्रा बंद कर दे और उन्हें लिख मत।
पद 40 का गुप्त इतिहास अब यहूदा के गोत्र के सन द्वारा खोला जा रहा है, और उस इतिहास में सच्चे प्रोटेस्टेंट सीन की रेखा 7 गर्जनों द्वारा निरूपित की गई है। जब जंगल में पुकारने वाली आवाज ने जुलाई 2023 में पुकारना आरंभ किया, तब यहूदा के गोत्र के सिंह ने इस बात के विषय में एक और प्रकाशन खोल दिया कि 7 गर्जनाएं किसका प्रतिनिधित्व करती है।
7 गर्जनाएं 18 जुलाई 2020 से लेकर जब 144,000 की गति सड़कों में मार डाली गई, शीघ्र आने वाली रविवार व्यवस्था तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती हैं। 7 गर्जनाओं की रेखा उस इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं की पहचान करती है। पहली निराशा के पश्चात मध्यरात्रि पुकार का संदेश आता है, और उसके पश्चात रविवार व्यवस्था आती है, जब सिस्टर व्हाइट ने 7 गर्जनाओं की पहचान या तो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के इतिहास के रूप में अथवा भविष्य की घटनाओं के रूप में की, तब दोनों ही निरूपणों में उन्होंने ये पहचाना कि वे घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
मिडनाइट क्राय का संदेश ऐसी किसी वस्तु के समान प्रतीत हो सकता है जो कोई घटना नहीं है, परंतु मिलरवादी इतिहास में 12 से 17 अगस्त 1844 तक की एक्सेटर शिविर सभा एक घटना थी, जिसके साथ उस घटना से संबंधित कई सहवर्ती विवरण जुड़े हुए थे। तथापि शिविर सभा में मिडनाइट क्राय संदेश का पहुंचना मत्ती 25 की 10 कुमारियों के दृष्टांत की भी एक पूर्ति था। एक्सेटर शिविर सभा की वो घटना 7 गर्जनों की एक पूर्ति थी, परंतु 10 कुमारियों का दृष्टांत उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करता, वो कुमारियों के अनुभव का उल्लेख करता है।
मत्ती शतनिस की 10 कुमारियों का दृष्टांत भी एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को चित्रित करता है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी 393।
जिस प्रकार 7 गर्जनाएं प्रथम और तृतीय स्वर्गदूतों की गति के समानांतर इतिहास की पहचान कराती है, उसी प्रकार 10 कुमारियों का दृष्टांत भी उन दो समानांतर इतिहासों की पहचान कराता है।
मेरा ध्यान प्रायः 10 कुमारियों के दृष्टांत की ओर आकर्षित कराया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका इस समय के लिए एक विशेष अनुप्रयोग है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू ऑन हेरल्ड, अगस्त 19, 1890।
7 गर्जनों का प्रतीक उन समानांतर इतिहासों की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और 10 कुमारियां उन दो समानांतर इतिहासों में बुद्धिमान
और मूर्ख कुमारियों के अनुभव का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1856 तक मिलराइट अनुभव फिलाडेल्फिया का अनुभव था और जुलाई 2023 के कुछ समय बाद तक 144,000 की गति का अनुभव लोदिकिया का अनुभव था। दोनों इतिहासों में मध्यरात्रि की पुकार के संदेश के आगमन पर बुद्धिमान और मूर्ख कुमारियां प्रकट की जाएंगी, क्योंकि तभी ये देखा जाएगा कि तैयारी का तेल किसके पास था।
मूर्ख कुमारियों द्वारा निरूपित कलीसिया की अवस्था को लोदिकिया की अवस्था भी कहा गया है। रिव्यू एंड हेरल्ड, अगस्त 1890।
जो लोग जुलाई 2030 के अंत में अवतरित हुए प्रधान दूत मिकाएल के हाथ में जो संदेश है उसे खाने से इनकार करते हैं, वे लाओदिकिया की अवस्था में बने रहेंगे, और जो लोग उस छोटी पुस्तक को लेकर उसे खाएंगे वे फिलाडेल्फिया की अवस्था में प्रवेश करेंगे। लाओदिकिया की अवस्था ऐसे लोगों या ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसके बाहर मसीह है तो भी वो प्रवेश चाहता है, और फिलाडेल्फिया की अवस्था दिव्यता के मानवता के साथ संयोग के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सात गर्जनाएं सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह की उस रेखा की घटनाओं की पहचान कराती है जो 45 के गुप्त इतिहास में रखी गई है, जिसका आरंभ 18 जुलाई 2020 को होता है और जिसका अंत रविवार के विधान पर होता है। दस कुवारियों का दस्तांते। उसी अवधि में 144,000 में गिने जाने के लिए बुलाए गए लोगों के अनुभव की पहचान करता है। 18 जुलाई 2020 से लेकर रविवार के कानून तक 144,000 के इतिहास की पहचान कराने वाली घटनाएं और उस इतिहास के दौरान दो वर्गों का अनुभव इन दो समानांतर इतिहासों में जो कार्य सौंपा गया था और है उसकी पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। उस कार्य का प्रतिनिधित्व प्रकाशित वाक्य तैयार 14 के स्वर्गदूत करते हैं। मिलरवादियों के कार्य का प्रतिनिधित्व पहले और दूसरे स्वर्गदूत करते थे और 144,000 के कार्य का प्रतिनिधित्व तीसरा स्वर्गदूत करता है।
मुझे अनुभव प्राप्त करने के बहुमूल्य अवसर मिले हैं। मुझे स्वर्गदूतों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय संदेशों के संबंध में अनुभव हुआ है। स्वर्गदूतों को स्वर्ग के बीचों बीच उड़ते हुए दर्शाया गया है, जो संसार को चेतावनी का संदेश सुना रहे हैं और जिनका इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में जी रहे लोगों पर सीधा प्रभाव है। इन स्वर्गदूतों की आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि वे परमेश्वर के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक हैं जो स्वर्गीय ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में कार्य कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं जो परमेश्वर की आत्मा से प्रबुद्ध हैं और सत्य के द्वारा पवित्र किए गए हैं, इन तीनों संदेशों को उनके क्रम में घोषित करते हैं। लाइफ स्केचेस 429।
मुहर लगाने के समय की शुरुआत में 11 सितंबर 2001 को परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा को जो काम दिया गया था, वही मुहर लगाने के समय के अंत में जब जुलाई 2023 में मिकाएल उतरे, परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा को फिर से दिया गया।
यूहन्ना ने देखा, एक और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता आया, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। प्रकाशित वाक्य 18:1। वो कार्य परमेश्वर की प्रजा की आवाज़ है, जो संसार को चेतावनी का संदेश घोषित करती है। द 1888 मटीरियल्स 926।
जैसे सात गर्जनों द्वारा निरूपित घटनाएं और दस कुमारियों द्वारा निरूपित अनुभव है, वैसे ही तीन स्वर्गदूतों का कार्य दो समानांतर इतिहासों का प्रतिनिधित्व करता है।
परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 14 के संदेशों को भविष्यवाणी के क्रम में उनका स्थान दिया है, और उनका कार्य इस पृथ्वी के इतिहास के अंत तक समाप्त नहीं होना है। पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश इस समय के लिए अब भी सत्य हैं, और जो इसके बाद आता है उसके साथ समानांतर चलना है। तीसरा स्वर्गदूत अपनी चेतावनी ऊंचे स्वर में घोषित करता है। इन बातों के बाद यूहन्ना ने कहा, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो गई। इस आलोक में तीनों संदेशों का प्रकाश संयुक्त है। द 1888 मटीरियल्स 800।
दानियल 11 के 13-15 पदों में धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद मक्काबी, धर्मत्यागी गणतंत्रवाद अंतियोकुस 3 और सूर की वेश्या तेरे लोगों के लुटेरे की भविष्यवाणीगत कार्यवाही की पहचान की गई है। उसी इतिहास में 144,000 के सच्चे प्रोटेस्टेंट सीन की भविष्यवाणीगत रेखाएं उनके कार्य अनुभव और उन घटनाओं की पहचान करती हैं जो परमेश्वर के अंत समय के लोगों के बीच घटित होती है। सच्चे प्रोटेस्टेंट सीन की रेखा को 7 गर्जनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एकमात्र ऐसी भविष्यवाणी है जिसे मुद्राबंद किया हुआ बताया गया है। अनु ग्रह अवधि के बंद होने से ठीक पहले ये आज्ञा यहूदा के गोत्र के सिंह की ओर से आती है, उसी की ओर से जिसने 7 गर्जनों की भविष्यवाणी को मुद्रा बंद किया था कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की मुहर खोली जाए। 144,000 की मुहरबंदी के समय के अंत में 7 गर्जनों का खोला जाना, जिसकी पूर्व छाया मुहरबंदी के समय के आरंभ में 7 गर्जनों के खोले जाने द्वारा दिखाई गई थी, दानियेल की पुस्तक के उस भाग पर लागू किया जाना है, पंक्ति पर पंक्ति जो अंतिम दिनों से संबंधित है, और वो भाग पद 40 का छिपा हुआ इतिहास है। जब वो खोला जाना पूर्ण रीति से संपन्न हो जाएगा, जैसा कि 7वीं मुहर के खोले जाने द्वारा दर्शाया गया है, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अग्नि 144,000 पर उंडेलेगा, जैसा उसने पिंतेकुस्त के समय चेलों पर किया था। पिंतेकुस्त शीघ्र आने वाले रविवार व्यवस्था के साथ सामंजस्य रखता है।
मैं आकुल लालसा के साथ उस समय की प्रतीक्षा करता हूँ जब पेंटिकोस्ट के दिन की घटनाएं उस अवसर से भी कहीं अधिक सामर्थ्य के साथ फिर दोहराई जाएंगी। यूहन्ना कहता है, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास महान सामर्थ्य था और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। तब पेंटिकोस्ट के समय की ही तरह लोग अपनी अपनी भाषा में उन्हें सुनाया गया सत्य सुनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाषा में। परमेश्वर हर उस आत्मा में नया जीवन फूंक सकते हैं जो सच्चे मन से उनकी सेवा करना चाहती है, और वे वेदी पर से एक दहकता अंगारा लेकर उनके होंठों को छू सकते हैं और उनकी वाणी को अपनी स्तुति में वाक्पटु बना सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अद्भुत सत्यों को प्रकट करने की सामर्थ्य से हजारों आवाजें ओतप्रोत कर दी जाएंगी, हकलाती जीभ खुल जाएगी और संकोची सत्य की साहसपूर्ण गवाही देने के लिए दृढ़ किए जाएंगे। प्रभु अपने लोगों की सहायता करें कि वे आत्मा के मंदिर को हर प्रकार की अशुद्धि से शुद्ध करें और उनसे ऐसा निकट संबंध बनाए रखें कि जब अंतिम वर्षा उंडेली जाएगी तो वे उसके सहभागी बने। रिव्यू एंड हेरल्ड, 20 जुलाई 1886।
मुहर लगाने के समय का आरंभ उसके अंत को दर्शाता है। आरंभ में अंतिम वर्षा सीमित मात्रा में उंडेली गई थी और अंत में ये असीमित रूप से उंडेली जाती है। 11 सितंबर 2001 को जो स्वर्गदूत उतरा था वो वही स्वर्गदूत है जो जुलाई 2023 के अंत में उतरा। पिंतेकुस्त का इतिहास मसीह के पुनरुत्थान से आरंभ हुआ और पिंतेकुस्त की पूर्ण पूर्ति का समापन 144,000 के पुनरुत्थान पर होता है।
अपने चेलों पर पवित्र आत्मा फूंकने और उन्हें अपनी शांति प्रदान करने का मसीह का कार्य पिंतेकुस्त के दिन बरसाई जाने वाली प्रचुर वर्षा से पहले कुछ बूंदों के समान था। भविष्यवाणी की आत्मा खंड 3:350 है।
पुनरुत्थान के बाद और अपने पिता के पास आरोहित होने के तुरंत बाद ही मसीह ने अपने शिष्यों पर फूंका। जब वो अपने पिता से भेंट करके नीचे उतरे तो वे शिष्यों पर प्रकट हुए और उन पर कुछ बूंदें फूंकी जो पिंतेकुस्त की प्रचुर वर्षा से पहले थीं। ये कुछ बूंदें मोहरबंदी के समय की शुरुआत का प्रतीक है और वो प्रचुर वर्षा उसके समापन का प्रतीक है। मोहरबंदी के समय की शुरुआत अंत में फिर दोहराई जाती है, और जैसे पिंतेकुस्त काल के प्रारंभ में मसीह ने अपने शिष्यों पर फूंका, वैसे ही उस काल के अंत में उन्होंने अपनी अंतिम दिनों की प्रजा पर भी फूंका।
सूखी हड्डियों पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का श्वास फूंका जाना आवश्यक है ताकि वे मरे हुओं में से पुनरुत्थान के समान क्रियाशील हो उठें। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, 1 दिसंबर 1903।
दो गवाहों की मिर्फी में ये तथ्य शामिल है कि जिन्होंने नैशविल और 18 जुलाई 20 के बारे में झूठा संदेश घोषित किया, उन्होंने ऐसा लाओदिकियाइयों के रूप में किया। मरी हुई सूखी हड्डियों का पुनरुत्थान लाओदिकिया की अवस्था जो मृत्यु की अवस्था है से फिलाडेल्फिया की अवस्था जो जीवन है की ओर एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जो श्वास उस पुनरुत्थान और परिवर्तन को उत्पन्न करती है वो एक भविष्यवाणी संदेश है।
परमेश्वर से हमें कैसी शक्ति चाहिए कि केवल विधिवादी धर्म वाले ठंडे हृदय उनके लिए प्रदान की गई श्रेष्ठ बातें, मसीह और उसकी धार्मिकता देख सकें। सूखी हड्डियों को जीवन देने के लिए एक जीवनदायी संदेश आवश्यक था। मैनुस्क्रिप्ट रिलीजेज वॉल्यूम 12, 205।
मसीह के पुनरुत्थान के बाद की अवधि को दो अवधियों में विभाजित किया गया। पहली अवधि 40 दिनों की थी, जिसके बाद उन्होंने स्वर्गारोहण किया और उसके बाद पिंतेकुस्त से पहले के 10 दिन रहे। 40 मरुभूमि का एक प्रतीक है। इसी प्रकार 3.5 दिन या 1260 वर्ष या दिन भी उसी के प्रतीक है। जब जुलाई 2023 में माइकल उतरा, तब सड़कों पर मृत्यु के 3.5 दिनों का अंत हुआ, क्योंकि मसीह ने 144,000 के बीच अपनी दिव्यता को मानवता के साथ संयुक्त करने का कार्य आरंभ किया। उस कार्य का निरूपण पिंतेकुस्त से पूर्व के 10 दिनों द्वारा किया गया था, जहां पाप को दूर किया गया और भाइयों के बीच एकता स्थापित की गई। 10 एक परीक्षा प्रक्रिया का प्रतीक है, और वो परीक्षा प्रक्रिया पिंतेकुस्त पर समाप्त हुई, जो रविवार व्यवस्था का प्रतीक है। उसी ऐतिहासिक बिंदु पर पद्य 40 में, जहां 8 फारसी राजाओं का इतिहास और यहूदियों तथा रोम के बीच की संधि का इतिहास पशु की मूर्ति की परीक्षा प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, वही पिंतेकुस्त से पूर्व के 10 दिनों में कुमारियों की परीक्षा प्रक्रिया का भी चित्रण किया गया है। उस इतिहास में प्रोटेस्टेंटवाद और गणतंत्रवाद के धर्म त्यागी सींग एक होकर पशु की मूर्ति का निर्माण करते हैं, जबकि सच्चा प्रोटेस्टेंट सींग उनकी मनुष्यता को मसीहसिता के दिव्यता के साथ जोड़ता है और इस प्रकार एक ऐसी प्रक्रिया में मसीहसिता की प्रतिमा का निर्माण करता है जो उपासकों के दो वर्गों को पृथक करती है। 7 गर्जनों के रूप में निरूपित ऐतिहासिक घटनाएं उस इतिहास में अनुमुद्रित की गई हैं, जो दानियेल 11:13-15 आयतों द्वारा निरूपित है, और वे मिलकर 40वीं आयत के गुप्त इतिहास के साथ समन्वित है, जो शीघ्र आने वाले रविवार विधि पर समाप्त होता है, जहां सप्तपालकों के लिए अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाती है।
फिर ये दृष्टांत सिखाते हैं कि न्याय के पश्चात कोई परीक्षा काल नहीं होना है। जब सुसमाचार का कार्य पूर्ण हो जाता है, तब तुरंत भले और बुरे के बीच पृथक्करण होता है और प्रत्येक वर्ग की नियति सदा के लिए स्थिर हो जाती है। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 1:30-73।
बुद्धिमानों और मूर्खों का, लाउदीकियों और फिलाडेल्फियों का, या गेहूं और खरपतवार का पृथक्करण स्वर्ग दूतों द्वारा किया जाता है।
खरपतवार और गेहूं दोनों को कटनी तक साथ साथ बढ़ने दो, तब अलग करने का काम स्वर्ग दूत ही करते हैं। चयनित संदेश पुस्तक 2:59।
वो संदेश जो अनुग्रहवादी के समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है, परमेश्वर की प्रजा के कार्य की पहचान कराता है, जैसा कि स्वर्गदूतों द्वारा प्रतिरूपित किया गया है। इन लेखों में निहित संदेश अब 60 से अधिक भाषाओं, जीभों में समस्त पृथ्वी पर प्रकाशित किया जा रहा है। ये कार्य अब अनुग्रहवादी के समाप्त होने से ठीक पहले संपन्न किया जा रहा है, और इस संदेश को प्रस्तुत करना परमेश्वर की अंतिम दिवस की प्रजा का कार्य है। ये संदेश उन घटाओं की पहचान कराता है जो 7 गर्जनों के रूप में प्रतिरूपित की गई है, और इस संदेश को समझने तथा प्रस्तुत करने का कार्य बुद्धिमान कुवारियों के अनुभव को उत्पन्न करता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
रात्रि के दर्शन में मेरे सामने एक अत्यंत प्रभावशाली दृश्य प्रकट हुआ। मैंने देखा कि एक विशाल अग्निगोला कुछ सुंदर महलों के बीच गिरा, जिससे उनका तत्काल विनाश हो गया। मैंने किसी को कहते सुना, हमें पता था कि परमेश्वर के न्याय पृथ्वी पर आने वाले हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी आएंगे। दूसरों ने पीड़ा भरी आवाजों में कहा, तुम जानते थे, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हमें पता नहीं था। चारों ओर से मुझे इसी प्रकार के उलाहने के शब्द सुनाई दे रहे थे। मैं अत्यंत व्याकुलता में जाग उठा। मैं फिर से सो गया और मुझे लगा कि मैं एक बड़ी सभा में हूँ। एक अधिकारवान व्यक्ति उस सभा को संबोधित कर रहा था, जिसके सामने विश्व का एक नक्शा फैला हुआ था। उसने कहा कि वो नक्शा परमेश्वर की दाख की बारी को दिखाता है, जिसकी खेती की जानी चाहिए। जैसे ही स्वर्ग से आने वाला प्रकाश किसी पर चमकता, उस व्यक्ति को वो प्रकाश दूसरों की ओर परावर्तित करना था। अनेक स्थानों पर दीप जलाए जाने थे और इन दीपों से अन्य दीप भी जलाए जाने थे। ये वचन दोहराए गए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद चला जाए तो उसे फिर किससे नमकीन किया जाएगा? वो फिर किसी काम का नहीं रहता, केवल बाहर फेंक दिया जाता है और लोग उसे पैरों तले रौंदते हैं। तुम संसार का प्रकाश हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। नहीं लोग दीपक जलाकर उसे माप के नीचे रखते हैं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मत्ती 5:13-16। मैंने शहरों और गांवों से और पृथ्वी के ऊंचे तथा निचले स्थानों से प्रकाश की किरणें चमकती हुई देखी। परमेश्वर के वचन का पालन किया गया और परिणाम स्वरूप हर शहर और गांव में उसके लिए स्मारक थे। उसके सत्य का प्रचार समस्त विश्व में किया गया। तब इस नक्शे को हटाकर उसकी जगह दूसरा रखा गया। उस पर केवल कुछ ही स्थानों पर प्रकाश चमक रहा था। दुनिया का बाकी हिस्सा अंधेरे में था। इधर उधर बस हल्की सी रोशनी की झलक थी। हमारे शिक्षक ने कहा, यह अंधेरा मनुष्यों के अपने ही मार्ग पर चलने का परिणाम है। उन्होंने बुराई की वंशानुगत और अर्जित प्रवृत्तियों को पाल पोस कर रखा है। उन्होंने प्रश्न करना, दोष निकालना और आरोप लगाना अपने जीवन का मुख्य काम बना लिया है। उनके हृदय परमेश्वर के सम्मुख ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी ज्योति को टोकरी के नीचे छिपा दिया है। यदि मसीह का प्रत्येक सैनिक अपना कर्तव्य कर चुका होता, यदि सियोन की दीवारों पर प्रत्येक पहरेदार ने तुरही को एक निश्चित ध्वनि दी होती, तो संसार अब तक चेतावनी का संदेश सुन चुका होता। परंतु ये कार्य कई वर्षों से पीछे रह गया है। जब लोग सोए रहे, शैतान ने हम पर बाजी मार ली। टेस्टिमोनीज 9:28-29।